नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका हार्दिक स्वागत ओशो रेडियो के म्यूजिकल एपिसोड में। आज के एपिसोड में डिस्कोर्स कृष्ण स्मृति वॉल्यूम नंबर 8 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें कृष्ण की लीलाओं के प्रति जगा रहे हैं।
कृष्ण के बाल्यकाल की तथा अन्य जितनी कथाएं हैं, जैसे चांदू तथा मुस्टिक नाम के पहलवानों को पछाड़ना, कंस वध, कालिया मर्दन, केशी अग पग घोटक पूतना आदि असुरों का नाश, रावण नल का पी जाना इत्यादि इत्यादि, तो क्या ये सब कथाएं सत्य कथाएं हैं या प्रतीक है? और इनमें से कौन कौन सी लक्षणाएं और प्रतीक है? आज ही आपने कहा है, गीता में कहा है कि विनाशाय च दुष्कृताम से आप अर्थ लेते हैं कि दुष्टों का परिवर्तन करते हैं, उनका सुधार करते हैं, लेकिन कृष्ण ने उपरोक्त दुष्टों का वध क्यों किया और कराया?
संबंध में एक बात तो सबसे पहले ये समझने जरूरी है, जो कि सदा से ही उलझन में लोगों को डालती रही, छोटा सा बच्चा है कृष्ण, इतने शक्तिशाली लोगों को हारा कैसे सकेगा? के पास एक ही उपाय था इस पहेली को हल करने का, और वो उपाय ये था कि वो कृष्ण को भगवान मान ले, परम शक्तिमान मान ले, फिर सारी पहेलियां हल हो जाती। लेकिन इसका भी मतलब गहरे में यही हुआ कि छोटी शक्ति पर बड़ी शक्ति विजय पा जाती है। कोई राक्षस है, कोई शक्तिशाली पहलवान है, कृष्ण दिखाई पड़ते हैं छोटे, लेकिन वो महाशक्तिवान है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के व्याख्या ने कृष्ण के व्यक्तित्व को समझा ही नहीं। इस तरह की जो व्याख्या है वो मूलतः गलत भ्रांत है, क्योंकि उसने जो आधार में बात है वो यही है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति पर जीत जाती है। मैं कुछ और कहना चाहूंगा, उसे समझना जरूरी होगा। इस जगत में जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, और जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। इन सारी कथाओं में मेरे लिए अर्थ ऐसा है, जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। असल में जीतने की चाह में ही बहुत गहरे में हार छिपी, और जो जीतना नहीं चाहता इस भाव में ही वो जीता ही हुआ है, ये भाव छिपा है। इसे ऐसा समझे अगर कि जो आदमी जीतना चाहता है वो गहरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, जो आदमी जीतना चाहता है वो हीन भाव से पीड़ित है। वो जानता तो है कि हीन, जीत के सिद्ध करना चाहता है कि हीन नहीं। जो आदमी जीतने के लिए आतुरी नहीं है वो अपनी श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित है, उसे कहीं कोई हीनता ही नहीं है जिसे सिद्ध करने के लिए, जिसे असिद्ध करने के लिए जीत अनिवार्य हो। इसे अगर हम ताओ से समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लाओसे ने एक दिन अपने मित्रों को कहा है कि मुझे जिंदगी में कोई हारा नहीं सका। एक व्यक्ति ने उससे खड़े होकर पूछा कि वो राज हमें भी बताओ वो सीक्रेट, क्योंकि जीतना तो हम भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई हमें हरा ना सके। लाओ सांसने लगा, उसने कहा कि फिर तुम न समझ सकोगे उस राज को, क्योंकि तुमने पूरी बात भी न सुनी और बीच में पूछ बैठे। मैंने कहा था मुझे जिंदगी में कोई हरा न सका, पूरा वाक्य तो कर लेने दो। लाओसे ने पूरा वाक्य किया, उसने कहा मुझे जिंदगी में कोई हरा न सका क्योंकि मैं हारा ही हुआ था, मैं पहले से ही हारा हुआ। मुझे जीतना मुश्किल था क्योंकि मैंने जीतना ही नहीं चाहता। तो उसने उन लोगों से कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम मेरे राज को समझ जाओगे तो गलती में हो, तुम जीतने की आकांक्षा करते हो वही तुम्हारी हार बन जाएगी। सफलता की आकांक्षा ही अंत में असफलता बनती है और जीवन की अति आकांक्षा ही अंत में मृत्यु बन जाती है। स्वस्थ होने का पागलपन ही बीमारी में ले जाता है। जिंदगी बहुत अद्भुत है। यहां हम जिस चीज को बहुत जोर से मांगते हैं उसी को खो देते हैं। जिस चीज को हम मांगते ही नहीं वो मिल जाती है। असल में हम मांगते नहीं, इसका मतलब ही यही है कि वो मिली ही हुई। कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं इसलिए जीत जाते हैं ऐसा मैं न कहूंगा, क्योंकि ये तो फिर वही शक्ति का पुराना कानून हुआ कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इसमें कृष्ण की कोई विशेषता ना होती। अगर राक्षस बड़े शक्तिशाली होते तो वो जीत जाते, तो फिर गणित हुआ शक्ति का। ये तो गणित हुआ तराजू पर वजन का कि जहां वजन ज्यादा था वहां नीचे बैठ जाएगा, इसमें कृष्ण की कोई बड़ी जीत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी आज तक कृष्ण की जीत की व्याख्या की है वो इसी तरह सोच सके, क्योंकि उनके पास एक ही गणित है। जीसस का एक वचन है, ब्लेसेड आर द मीक बिकॉज दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा। बड़ी उल्टी बात है। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी के मालिक वे ही होंगे। कृष्ण जीतने को बिल्कुल आतुर ही नहीं। बच्चे जीतने को आतुर होते भी नहीं, सिर्फ खेलने को आतुर होते। जीत बड़े बाद में आती है जब चित्त बड़े बीमार हो जाते, रुग्ण हो जाते। कृष्ण तो खेल रहे हैं, वो बड़े राक्षसों से लड़ रहे हैं तब भी खेल में। राक्षस जीतने के लिए आते, और एक विनम्र बच्चे से जिसे जीतने का कोई ख्याल नहीं, जो भी खेल रहा है, जो एकदम मासूम और नाजुक है, उससे भी राक्षस हार जाते, हार जाएंगे। जापान में एक कला है जिसका नाम है जूडो, या दूसरा नाम है जिजित्सु। इस कला के संबंध में दो तीन बातें ख्याल में लेने को बड़ा अच्छा होगा। जूडो कुश्ती की कला है लेकिन उसका राज बड़ा उल्टा है। जूडो की कला जो सीखता है लड़ने के लिए, उसके नियम हमारी लड़ाई के नियम से बिल्कुल उल्टे हैं। अगर मैं आपसे लड़ूं तो मैं आप पर चोट करूंगा, आप चोट का बचाव करेंगे, आप मुझ पे चोट करेंगे, मैं चोट का बचाव करूंगा। ये साधारण लड़ने का नियम है। जूडो का नियम उल्टा है। जूडो का नियम यह है कि मैं आप पर हमला कभी ना करूं, जिसने हमला किया वो हार जाए। क्योंकि हमले में शक्ति वह होती। मैं हमले को उकसाऊं, दूसरे को प्रेरित करूं कि वो हमला करे, और मैं बिल्कुल एट ईज अपने में रहूं, मैं जरा भी हिलू डुलू भी नहीं, मैं कुछ करूं ही नहीं, मैं सिर्फ दूसरे को उकसाऊं कि वो हमला करे, मैं उसे क्रोधित करूं, मैं उसे भड़काऊं, मैं उसे जलाऊं और मैं शांत रहूं, और जब वो हमला करे तो मैं रेसिस्ट ना करूं, जब वो मेरे ऊपर चोट करे, घूसा मारे, तो मैं उसके घूसे के विरोध में अपने शरीर को अकड़ाऊं ना, शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दूं कि उसका घूसा मेरा शरीर पी जाए। कभी आपको ख्याल एक शराबी के साथ बैठ जाए एक बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी उलट जाए रास्ते में, तो आपको चोट लगेगी, शराबी को नहीं लगेगी। कभी सोचा कि राज क्या है? शराबी ज्यादा ताकतवर है इसलिए चोट लगेगी, आप कमजोर है इसलिए चोट लगेगी। नहीं, जब गाड़ी उल्टी तो आप होश में, गाड़ी के उलटते ही आपको लगा कि अब चोट लगेगी, अब मैं बचू, और आप साफ हो गए, स्ट्रेंट हो गए, आपकी सब नसें, आपकी हड्डियां सब मजबूती से जमीन के खिलाफ खड़ी हो गई बचाव के लिए, आप खड़े हो गए। शराबी को पता ही नहीं है गाड़ी उलट गई, या गाड़ी पहले से उल्टी हुई थी उनके लिए, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, वो गिर गए, वो गिरने के साथ कोऑपरेट किए, उन्होंने गिरने के साथ सहयोग किया, वो जमीन के खिलाफ अकड़े नहीं, जमीन के साथ एक हो गए। तो शराबी जब गिरता है तो बोरे की तरह गिरता है, बस गिर जाए, इसलिए शराबी रोज रात गिरते चोटे नहीं खाते, आप उतने गिरे तो पता चल जाए। बच्चे रोज गिरते हड्डियां नहीं टूटती, आप उतने गिरे तो एक ही दिन में सब नष्ट हो जाए। क्या बात है, बच्चे की ताकत ज्यादा है कि बच्चा गिरता है हड्डी नहीं टूटती? नहीं, बच्चा गिरने के साथ भी एक हो जाता है, विरोध नहीं करता गिरने का, गिरने में भी साथ देता है, गिरते वक्त भी राजी होता है, एक्सेप्टेबिलिटी है गिरते वक्त। तो जूडो की कला कहती है कि जब तुम्हें कोई मारे तब तुम राजी हो जाओ पिटने को, और जरा भी कहीं भीतर से विरोध न करना बड़ी कठिन कला है, राजी हो जाना, पी जाना उसके भूसे को। तो एक तो खुद हमला मत करना, क्योंकि हमले में शक्ति वह होती है, और जब कोई दूसरा भूसा मारे तो उसके भूसे को भी पी जाना, तो उसकी शक्ति भी तुम्हें मिल जाती। और इसलिए जूडो में बड़ा पहलवान हार सकता है और कमजोर आदमी जीत सकता है, जीत जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण जूडो जानते थे, सभी बच्चे जूडो जानते ही, वही उनके उनकी उनकी जिंदगी का राज है, बच्चे की जिंदगी का। कृष्ण जीत सके अगर, सभी कथाएं ऐतिहासिक हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक शब्द है उसकी बात कर रहा हूं। कृष्ण अगर जीत सके तो खेल था उनके लिए, अभिनय था, मौसम थी, मजा था, हमले वर्ग न थे, जीतने किसी को निकले ना थे, कोई दूसरा जीतने आया था। और मैं मानता हूं कि कृष्ण जैसे बच्चे पर अगर किसी पहलवान ने हमला किया तो हम कह सकते हैं कि ये पहलवान हार जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पर हमला करने गया है वो भीतर से बड़ा हारा हुआ आदमी होना चाहिए, बहुत उसके भीतर बहुत कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, उसके भीतर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। एक छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा पहलवान हमला करने गया है, यही इस बात की सूचना है कि यह हारेगा, ये हार ही चुका है, इसको लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको पहले मान लेना था कि हार चुका है। हम सदा हमला जब करते हैं किसी पर, हमला करने को उत्सुक होते हैं जब किसी पर, तब बहुत गहरे में हमने उससे अपनी हीनता स्वीकार कर दी। असल में जो श्रेष्ठ है वे किसी का हमला करते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता जिससे वे हीन है और हमला करे, हमले की कोई जरूरत नहीं होती, भीतर की हीनता का कीड़ा हमला करवा देता है। कृष्ण का कमजोर होना, बालक होना, कृष्ण का लड़ने के लिए आतुर न होना, कृष्ण का किसी पर जीतने के लिए आकांक्षी न होना ही राज, घटनाएं ऐतिहासिक है या नहीं ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन जूडो की पूरी फिलोसॉफी, जिजिस्सु की पूरी कला कृष्ण की जिंदगी में शुरू होती। मैं तो कहूंगा कि कृष्ण जो है वो जिजिस्सु के पहले मास्टर, न तो किसी को जापान में पता है, न किसी को चीन में पता है, न किसी को हिंदुस्तान में पता है कि इस आदमी के सारी विजय का राज क्या है। इस आदमी के विजय का राज ही यही है कि विजय करने नहीं चाहता, इसे खेल है सब, उस खेल में ये तल्लीन हो जाता है। दूसरा तनावग्रस्त है, दूसरा चिंतित है, जीतने को आतुर है, परेशान है, वो अपने भीतर बटा और कटा हुआ है, टूट रहा है, अपने आप हार जाएगा। बच्चे को हराना मुश्किल है, यही अर्थ।
आचार्य जी, यशोदा को मुख में ब्रह्म दर्शन कराना और ब्रह्मांड का दर्शन कराना और अर्जुन को युद्ध में विश्वरूप का दर्शन कराना, ये दोनों फेनोमेना घटना विशेषण का आप तात्पर्य दर्शन कराएं और दूसरे हिस्से में ये बताएं कि क्या दिव्य दृष्टि देकर वापिस भी ली जाती है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को देकर वापिस ले ली थी।
आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सब जगह हमें विराट का दर्शन हो जाए। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सब जगह ब्रह्मांड है। प्रश्न तो सिर्फ निमित्त है, ये सुधा को दिखाई पा सकता है ब्रह्मांड उनके मुख में, ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे के मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता, हो जाता है धीरे धीरे, ये बात दूसरी, पहले तो दिखाई पड़ता है। यशोदा यशोदा को दिखाई पड़ सका कृष्ण के मुंह में विराट ब्रह्मांड, सभी माँ को दिखाई पड़ता है, लेकिन यशोदा पूरे अर्थों में माँ थी इसलिए पूरी तरह दिखाई पड़ सका है, और कृष्ण पूरे अर्थों में बेटा था इसलिए निमित्त बन सका है। इसमें कुछ मेरे को नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। अगर आप प्रेम से मुझे भी देख सकें तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ सकता है। देखने वाली आंखें चाहिए एक, और योग्य निमित्त चाहिए बस। एक छोटे से फूल में दिख सकता सारा जगत है भी छिपा, यहाँ अणु अणु में विराट छिपा है, एक छोटी सी बूंद में पूरा सागर छिपा है। एक बूंद को कोई पूरा देख ले तो पूरा सागर दिख जाए। अर्जुन को भी दिखाई पड़ सका, वो भी कुछ कम प्रेम में न था कृष्ण के, ऐसी मैत्री कम घटित होती है पृथ्वी पर जैसी वो मैत्री थी। उस मैत्री के क्षण में अगर कुछ निमित्त बन गया और अर्जुन को दिखाई पड़ सका तो कुछ आश्चर्य नहीं है, न कोई चमत्कार। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा हजारों बार हुआ है, उल्लेख नहीं होता है ये बात दूसरी, संग्रहित नहीं होता है ये बात दूसरी। ये जरूर समझने जैसा है कि क्या दी गई दिव्य दृष्टि वापिस ली जा सकती है। न तो दिव्य दृष्टि दी जा सकती है और न वापिस ली जा सकती है। किसी क्षण में दिव्य दृष्टि घटित होती है और खो सकती है। दिव्य दृष्टि एक हैपनिंग है, किसी क्षण में आप अपनी चेतना के उस शिखर को छू लेते हैं जहां से सब साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन उस शिखर पर जीना बड़ा कठिन, जन्म जन्म लग जाते हैं उस शिखर पर जीने के लिए, उस शिखर से वापस लौटाना पड़ता है। जैसे जमीन से आप छलांग लगाए, एक क्षण को जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर हो जाते, खुले आकाश में मुक्त पक्षियों की तरह हो जाते एक क्षण के, लेकिन बीता नहीं क्षण के आप जमीन पर वापस, एक क्षण को पक्षी होना आपने जाना। ठीक ऐसे ही चेतना का ग्रेविटेशन है, चेतना की अपनी कसी से, चेतना के अपने चुंबकीय तत्व जो उसे नीचे पकड़े हुए हैं, किसी क्षण में, किसी अवसर में, किसी सिचुएशन में आप इतनी छलांग ले पाते हैं कि आपको विराट दिखाई पड़ जाता है एक क्षण को, जिससे बिजली कौन गई हो, फिर आप वापिस जमीन पर आ जाते। निश्चित ही अब आप वही नहीं होते जो इस दर्शन के पहले थे, वो भी नहीं सकते, क्योंकि एक क्षण को भी अगर इस विराट को देख लिया था, अब आप वही नहीं हो सकते जो पहले थे, आप दूसरे हो गए, लेकिन वो जो दिखा था वो खो गए। रात अंधेरी हो, बिजली कौन जाए, एक क्षण को फूल दिखाई पड़े, पहाड़ दिखाई पड़े और खो जाए, फिर घना अंधकार हो जाए, लेकिन अब मैं वही नहीं हूँ जो पहले अंधकार में था। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि पहाड़ भी है, वृक्ष भी है, फूल भी है, अब मुझे पता अंधकार घना है, लेकिन अब उन फूलों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता, अब उन पहाड़ों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता, वे मैंने जान दिए, अब वे मेरे हिस्से हो गए, अब मैं जानता हूँ चाहे देखूं और चाहे न देखूं, चाहे पता चले चाहे पता न चले, लेकिन बहुत गहरे में मैं जानता हूँ कि पहाड़ है, वृक्ष है, फूल है, उनकी अज्ञात सुगंध मुझे छुएंगी, उनकी अज्ञात हवाओं में मुझे संदेश मिलेगा, अंधकार उन्हें छिपा सकता है अब, लेकिन मुझसे मिटा नहीं सकता। दिव्य दृष्टि कोई देता नहीं, लेकिन कृष्ण कहते मालूम पड़ते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, इससे कृष्ण ही पैदा होती। असल में आदमी की भाषा बड़ी उलझन से भरी है, या हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पड़ते हैं जो कि वस्तुतः जीवंत नहीं है, यहां हमें दिल मिलन की बात बोलनी पड़ती है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति को प्रेम देता हूं, लेकिन प्रेम दिया जा सकता है, प्रेम कोई वस्तु है जो दे दे, प्रेम घटित होता है, दिया नहीं जाता, लेकिन भाषा ऐसा कहती है कि मैं प्रेम देता हूं। मां कहती है मैं बेटे को प्रेम देती हूं, मैं किसी मां ने बेटे को कभी प्रेम दिया, प्रेम हुआ है, इट हैज हैपेंड, वो घटित हुआ है, दिया नहीं गया। ठीक उसी तरह भाषा की ही बात है, और ज्यादा बात नहीं है, न कोई प्रेम देता है न कोई लेता है, प्रेम घटता है, घट भी सकता है खो भी सकता है, ऊंचाइयां घटती हैं और खो जाती हैं, ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है। हिलरी और तेंजिंग एवरेस्ट पर गए, झंडा गाड़ा वापस लौटा है, एवरेस्ट पर रहना मुश्किल है, ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल, लेकिन एवरेस्ट पर किसी दिन रहा जा सकेगा, हम इंतजाम कर लेंगे, लौटना नहीं होगा, रुक भी सकेंगे। चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना, लेकिन रुका जाता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति रुकते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति छलांग लगाते हैं, देखते हैं, वापस लौट आते हैं। ये घटना घटती है, ये लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भाषा लेने देने में सोचती है, इससे बहुत कठिनाई होती है। हम कहते हैं मैं फलन व्यक्ति को सहानुभूति दी, सहानुभूति कोई देता है, बस घटती है। जो ठीक शब्द है वो ये है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच उस क्षण में दिव्य दृष्टि घटी, उसमें कृष्ण निमित्त बने, अर्जुन छलांग लगाने वाला बना, लेकिन भाषा में इसे कैसे कहेंगे, भाषा में इसे ऐसे कहेंगे कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, जिस जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे पूरे प्रेम से कोई खुली आंख से देख सके तो कुछ घट सकता है, लेकिन जब आपको घटेगा तो आप भी कहेंगे कि आपने दिया, मैं कहाँ देने वाला हूँ। शायद भाषा में कहना पड़े तो मैं भी कहूँ कि मुझसे आपको मिला, लेकिन मुझसे क्या मिल सकता है। केमिस्ट्री में एक शब्द है, उसे समझना चाहिए, वो है कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट उस चीज को कहते हैं जिसकी मौजूद में कोई चीज घट जाती है, लेकिन वो कोई भी भाग नहीं देता। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमें मिलाना हो और पानी बनाना हो तो बीच में विद्युत की मौजूदगी चाहिए। अगर बीच में विद्युत मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, मिल ना सकेंगे। आकाश में भी जो बिजली चमकती है वो इसीलिए चमकती है, अन्यथा आकाश के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी नहीं बन सकेंगे। वो बिजली के चमक की वजह से ही पानी बन पाता है बादल। लेकिन बड़ी खोज करके भी ये पता नहीं चलता कि बिजली का कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बिजली कुछ करती नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए बिजली कुछ भी नहीं करती, बिजली से कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मौजूदगी, जस्ट प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी भर सारी जरूरी है। उसकी बिना मौजूदगी की नहीं होगा, उसकी मौजूदगी में हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत कैटालिटिक एजेंट हैं जिनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन सब तरफ की नापजोक से पता चलता है कि उनसे कुछ जाता नहीं, उनसे कुछ खोता नहीं, उनसे कुछ होता नहीं। कृष्ण जो है वो कैटालिटिक एजेंट, और जिनको हम अब तक गुरु समझते रहे हैं वो बड़ी भ्रांति है। दुनिया में कोई गुरु नहीं, सिर्फ कैटालिटिक एजेंट। चेतना में भी घटनाएं घट सकती हैं किसी की मौजूदगी में, जो कि बिना मौजूदगी में शायद न घटे। प्रश्न की मौजूदगी में घटना घटती है। अर्जुन बेचारा निश्चित ही कहेगा कि आपने मुझे दी। रामकृष्ण की मौजूदगी में विवेकानंद को कुछ घटित होता है, विवेकानंद जरूर ही कहेंगे कि आपने मुझे दिया। और रामकृष्ण अगर भाषा में बहुत झंझट न पढ़ना चाहते हो तो वो भी कहेंगे ठीक है। भाषा की झंझट में सभी लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, मेरे जैसे लोगों को छोड़कर। लेने देने से काम चल जाता है, लेकिन वो शब्द उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक जगह पे नहीं है। और आदमी के पास दूसरा कोई शब्द भी नहीं है। एक चित्रकार से पूछ, वन गॉक से पूछो कि तुमने ये चित्र बनाया, तो वन गॉक कहेगा मैंने बनाया नहीं, ये मुझसे बना। मगर हम कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता, फर्क बहुत पड़ता। और हो सकता है जिंदगी में वन गॉक भी ना पड़े, वो कहेगी हाँ मैंने बनाया, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा उसे बनाते हुए, जो कोई झूठी बात नहीं, गवाह मिल जाएंगे कि आदमी बना रहा। लेकिन वानराग की अंतरात्मा तो कहती है कि मैंने बनाया नहीं, मुझसे बना, ये घटना घटी, ये एक हैपनिंग, एक ड्रीम नहीं, ये मेरे भीतर से हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझसे बनवा लिया गया, मैं सिर्फ मौजूद था, मैं सिर्फ गवाह था। दिव्य दृष्टि की जो घटना घटी है कृष्ण अर्जुन के बीच, वो एक बार नहीं बहुत बार घटी है। कभी बुद्ध मोगलान के बीच घटी है, कभी बुद्ध सारिपुत्र के बीच घटी है, कभी महावीर गौतम के बीच घटी है, कभी जीसस ल्यूक के बीच घटी है, कभी रामकृष्ण विवेकानंद के बीच घटी है, हजारों लाखों दफा घटी है। कुछ चमत्कार नहीं है इस जगत में, चमत्कार होते ही नहीं, अज्ञान नहीं समझ पाता और चमत्कार समझ लेता है। सब चमत्कार अज्ञान से पैदा होते हैं, चमत्कार हो ही नहीं सकते, जो भी हो रहा है सब सब सत्य है, सब तथ्य है। इस जगत में सब तथ्य, सब सत्य, लेकिन जब हम नहीं समझ पाते तो चमत्कार हो जाता है।
आज के एपिसोड में मेडिटेटिव म्यूजिकल नंबर्स आनंद ऋचा, देवा प्रेमल, मनोसे, देवकांत और मिलरेबा की एल्बम से लिए गए हैं। ओशो रेडियो के एक नए वेकअप एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
I came to your door, no shoes on my feet, looking for warmth, maybe something to eat. I asked for a friend, a hand I could hold. You gave me your love, was an ocean of gold. Chetana, Chetana. You gave me much more than you know. Chetana, Chetana. Your love found its way to my soul. Your smile like a sunrise, your laughter so wild, your eyes like an ocean and a newly born child. You walk like a queen in the court of your king. Love is your kingdom, it's a song that you sing. Chetana, Chetana.
of the universe. It's the silence in our soul. It's the joy that makes every moment new. It's the bliss when we are home. It's the heartbeat of the universe. It's the silence in our soul. It's the joy that makes every moment new. It's the bliss when we are home.